ओम शांति। जो होमवर्क सबको जो मिल रही थी उसमें मेरे को जो होमवर्क मिला था उस जो जितनों को मिला तो उसमें इसमें था कि सेल्फ चेकिंग मेथड, जैसे कि 5 पॉइंट के लिए बोला गया था। तो 5 पॉइंट में जैसे कि मैंने 5 पॉइंट निकाले हैं, जिसमें मैं निर्विघ्न स्थिति में कितना समय रह सकता हूँ, मैं निर्विघ्न कितना समय होकर के दूसरों को भी निर्विघ्न बना सकता हूँ, इस पर मैंने थोड़ा चिंतन किया था। क्योंकि निर्विघ्न का जो टाइटल तो हम सब याद भी करते हैं, रटते भी हैं, जपते भी हैं, लेकिन स्वरूप में जब तक नहीं आता है तब तक इसका अपने को भी फायदा नहीं होता है और दूसरों को भी इसका फायदा नहीं मिलता है। क्योंकि विघ्न तो कई प्रकार के आते हैं, जिसके कारण से कभी कभी हम सब ने देखा है कि हम सब ने जिस दिन इसका टाइटल इस सामान को प्रैक्टिस करने के लिए हम सब लिख के रखते हैं, उसी दिन सबसे ज्यादा विघ्न आ जाते उसी दिन हम फेल हो जाते। इसीलिए जो चीज हम संकल्प लेते हैं उसी दिन इसका प्रकोप क्यों होता है, क्योंकि ये सब है हम सबके अंदर में। बाबा भी जैसे मुरली सुनाते हैं तो कोई प्रतिज्ञा कराते हैं, उस समय बाबा भी कहते हैं बच्चे माया सुन रही है है ना, कहते हैं बाबा कहते हैं ना माया सुन रही है। तो इसका मतलब हम भी जो प्रतिज्ञा करते हैं तो माया अंदर हमारे अंदर में तो छिपी हुई है, अभी पूरे रूप से उसको खत्म तो किया नहीं है। इसीलिए उसी दिन वो चैलेंज करती है हम सबको। इसीलिए हमको भी जितना संकल्प लेते हैं तो संकल्प लेने से पहले कई बार ले चुके होंगे, तो उससे पहले हम कितने बार फेल हुए, किस बात में फेल हुए, कौन से संकल्प आए, कौन से संकल्पों ने इंटरफेयर किया, ये सब चीजों को पहले बंदोबस्त करना पड़ेगा आएंगे कैसे और इससे कैसे फाइट किया जाए, कितने मैंने अस्त्र शस्त्र रखा हुआ है, ये इस तरीके से आए तो इसको इस तरीके से खत्म किया जाए, वो ऊपर से आए तो ऊपर ही ऊपर से खत्म किया जाए, जमीन से आए तो जमीन से खत्म करने के, जैसे सरकार के पास में सारा बंदोबस्त होता है, जमीन से आने वालों को जमीन से, आकाश से आने वालों को आकाश में, हवा से आने वालों को हवा से खत्म करने का होता है एंटी मिसाइल। इसी तरीके से हमारे पास में भी अगर इस तरीके से पहले से संकल्प तैयार होंगे, पहले से हजारों श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा होगा तो हम निर्विघ्न रह सकेंगे। दूसरा है कि मैं सफलता के सितारे कितना बनाऊं। बाबा ने उस संडे की मुरली में भी बोला था, जो सितारों को आकाश में देख करके दुनिया के लोगों की नज़र बहुत ऊंचे ऊंचे है, निगाहें वहाँ टिकी हुई है, आगे जाके तुम भी धरती के सितारे बन जाओगे। तो धरती के सितारे जब हम बन जाएंगे तो जीता जागता सबूत है आत्मा अभिमानी स्थिति, अपना स्टार कितना समय चमक रहा है, तो इसके द्वारा आसपास में रहने वालों को भी कितना फायदा हो रहा है, मैं इसका कितना लुप्त उठा रहा हूँ। तो इस सब चीज़ों को हमको देखना है, क्योंकि सितारों का इतना गायन है तो कभी न कभी इस धरती के सितारों ने है ना उसका यादगार बनाए होंगे, तभी उसका यादगार आसमान को देखते हैं। क्योंकि अभी धरती में देखने लायक और समझने लायक कोई नहीं होंगे तो किसी न किसी को आधार तो बनाने पड़ेंगे। इसलिए जब तक यहाँ के सितारे नहीं चमकेंगे तब तक ऊपर ही देखते रहेंगे, और उस दिन उनको लगेगा कि हाँ उस आकाश में चमकने वाले सितारे धरती पर ही चमकना शुरू हो गए, तो फिर सबका नज़र हम चमकते हुए सितारों के ऊपर पड़ेगा। इसीलिए हम सबको चमकते हुए रहना है। तो परिस्थिति और समस्या के टाइम वो कभी कभी टिमटिमाता है, कभी कभी जैसे कि बुझ जाती है, तो इस सब को भी हमें चेक करते रहना है, तो फिर हम अपने को चेक करें सेल्फ चेकिंग में। ऐसा तीसरा में है कि मैं बाप को कितना समय साथ रखता हूँ, साथ रखेंगे तो सहयोग मिलेगा, और सहयोग मिलेगा और सहयोग जिसको मिल रहा है तो सहयोग दिया भी जा सकता है। बाबा ने तो बोला है कि अपने को आत्म समझ करके बाप को याद करना, ये तो एक ऊपर से बोलने का ही होता है, लेकिन जब तक बाबा को हम कॉम्बाइंड रूप से अपना साथ में नहीं रखते लंबा समय तक, तो उसका फायदा हमको खुद को भी नहीं मिलेगा और दूसरों को भी नहीं मिलेगा। तो हम बाबा ने यहाँ बोला है कि साथ में रखोगे तो सहयोग मिलेगा और सहयोग दूसरों को भी दे सकेंगे। तो बाबा ने बोला हुआ है कि आज सारी संसार की जो मनुष्य आत्माएं भगवान से सहयोग मांग रही, क्योंकि भगवान बाबा ने बोला है कि कमजोर बन करके अगर सहयोग मांगेंगे तो कभी भी सहयोग नहीं मिलेगा। कनेक्शन जुड़ा हुआ होगा तो सहयोग मिलेगा। ऐसे तो कहने में आता है कि जब जिस समय हम कमजोर होते हैं उसी समय भगवान की जरूरत पड़ती है, लेकिन भगवान का जो रूल्स नियम है कि कनेक्शन अगर आपका हट गया तो वहाँ प्रकाश नहीं आ सकता है, तो आप अंधेरे में होंगे। तो इसीलिए बाबा को कितना समय हम साथ रख सकते हैं इसके भी हमें स्वयं के ऊपर चेक करना है, उसका रूटीन बनाना है और टाइम टेबल बना के कितना समय रख सका और कितना समय और रखने की जरूरत थी और किस बातों से इसमें जैसे कि विघ्न डाला, इसका भी हमें टेस्ट चेक करना है। तो चौथा में हमने रखा था, तो जैसे कि स्वसेवा और विश्व सेवा, दूसरों की सेवा। तो कभी कभी क्या होता है कि स्वसेवा करे बिना दूसरों की सेवा करने लग जाते, इसीलिए आजकल ऐसे ही समय आ गया है, हम लोग अपने को उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे कहते हैं ना कि दूसरों का सिकड़ी फूकने से पहले अपने दाढ़ी मूछ को ध्यान रखना पड़ता, नहीं तो जैसे कि जल जाएगा, हम ठीक से वो कर नहीं पा रहे और दूसरों को सिखाने जाएंगे तो उतने ताने वाने तो बहुत सुनने पड़ते है ना। इसीलिए पहले स्व सेवा, तो पहले तो बाबा ने सबको आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करा के, आत्मा का पाठ पक्का करा के सेवा में भेजने का 14 साल की जो भट्टियाँ चली, अभी तो यहाँ 14 दिन भी नहीं होता है सेवा में चल जाता है। तो इसीलिए समस्या यहाँ सबसे ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, इसीलिए स्वसेवा सबसे पहले उसमें बैलेंस रखते रहना पड़ेगा, क्योंकि मुख की सेवा जो वाणी की सेवा होती है ना, इतना आकर्षणमय होता है कि सबकी वाई वाई जल्दी मिल जाता है, तालियां में बजने शुरू हो जाती है, सब इसे जैसे कि गायन बढ़ने लग जाता है, तो उस समय हम स्वयं की चेक करना भूल जाते हैं। तो आज तक जितने भी समस्याएं बाबा के बच्चों के ऊपर आया है उसका एक ही कारण है, स्व स्थिति स्ट्रांग नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, उसके कारण से पेपर परिस्थिति आई है, इसलिए इसके ऊपर भी सबसे पहले हमको ध्यान देना है। जो पांचों हमें रखा था मैंने, जैसे कि विशेषताओं को देखना है, अपना भी विशेषताओं को काम में लगाना है, दूसरों के भी विशेषताओं को देखने की चश्मा अगर हमारे पास में होगा, तो आज का जो स्लोगन में भी है, चश्मा अगर हमारे पास में सदा काल होगा, तो विशेषताओं को देखना भी ऐसे छोटी मोटी सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा 99% तो जो कोई न कोई कमी कमजोरी अपने पास ही होता है, और दूसरों को भी जैसा चश्मा लगाएंगे ऐसे दूसरे को दिखाई पड़ेगा। तो इस कारण से विशेषताओं को देखना, विशेषताओं को वर्णन करना, सबसे पहले उस व्यक्ति ने अपनी विशेषताओं को काम में लगाया हुआ होगा और उस विशेषताओं के कारण से अपनी कमी कमजोरी उसने दग्ध किया होगा, तो फिर धीरे धीरे फिर दूसरों की विशेषताओं को देखना शुरू होते हैं, देखना शुरू करते हैं। अपनी विशेषताओं को काम में लगाए बिना दूसरों को विशेषताओं को देखना शुरू करेंगे, ये सुपरफिशियली हो जाता है। इसलिए जैसे कि खोखलापन, जैसे कि आप खुद है नहीं और दूसरों को भी ऐसे बोलते हैं तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए पहले हम अपने विशेषताओं से संपन्न बने और विशेषताओं को इतना काम में लगाए तो फिर दूसरों को विशेषता स्वतः दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए हम सबको सबसे पहले स्वयं की विशेषताओं को काम में लगा करके फिर दूसरों की विशेषताओं को देखना आरंभ करेंगे तो ये लंबा समय चलेगा और जीवन का हिस्सा बन जाएगा। इसीलिए हम सबको इसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ओम शांति।
बाबा ने संगम युग में बहुत सारी एग्जाम्पल देते हैं भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की। तो बाबा बोलते हैं रूहानी सर्जन, वहां सर्जन क्या करते हैं और यहां सर्जन क्या करते हैं। बाबा बोलते हैं रूहानी सर्जन बनो, बाबा को सच सुना दो, क्योंकि वहां भी ऐसा कोई बड़ी बड़ी बीमारी होता है बोलते नहीं हैं, तो छुपाते हैं तो क्या होगा, बीमारी बढ़ जाती है। तो यहां भी ऐसा है, बाबा कहते हैं आप सच बाबा को सुना देंगे आपका बीमारी खत्म हो जाएंगे। और बाबा बोलते हैं सुदर्शन चक्रधारी, दुनिया में वो चक्र दिखाया बहुत सारी जो मारा, लेकिन बाबा कहते हैं ये सुदर्शन चक्रधारी यहां आपको जो स्वचिंतन करने से जो व्यर्थ है वो खत्म हो जाएंगे, साथ साथ में और जो अपना जो भविष्य में जो चाहिए पद उसके लिए भी आधार हो जाएंगे। तीसरा बाबा ने बताया था सितारे हैं, बाबा ने सितारे को हमको वो करते हैं, वो सितारे वहाँ ऊपर चमकते हैं लेकिन धरती के सितारे आप लोग, धरती के सितारे में हैं लोग, रात को भी जैसे बड़े बड़े सितारे को देखते हैं। तो यहाँ भी हम लोगों को उस प्रकार से आगे जा करके बहुत सारी आत्मा को साक्षात्कार होगा तो वो बहुत खुश होगा, सम्मुख देख करके साकार में। अभी ऊपर देखते हैं तो नीचे देखना कितना अच्छा लगता है उन लोगों को। तो सितारे हैं, हम लोगों को स्मृति ऐसा होना चाहिए मैं ज्ञान का सितारा हूँ। और बाबा कभी कभी वो टैली करते हैं जो चंद्रमा को टैली करते हैं, ब्रह्मा बाबा को यहाँ ब्रह्मा बाबा का स्वरूप, ब्रह्मा बाबा साकार में जो परिस्था स्वरूप थे, कभी कभी अशरीर अभ्यास करने का इतना मतलब आपको समय नहीं लगता है, लेकिन सूक्ष्म में अगर आप सूक्ष्म उतन में ब्रह्मा बाबा के साथ शेयर करेंगे बहुत सहज पुरुषार्थ होगा। ब्रह्मा बाबा को देखना चाहिए साकार में, अभी भी यहाँ हिस्ट्री हॉल में जो फोटो लगे हुए हैं, थोड़ा देर के लिए आप सामने खड़े हो जाओ अकेले, जब कोई दोपहर टाइम का हिस्ट्री हॉल में खाली रहता है आप जाकर खड़े हो जाओ, साकार की आप उस याद अपने आप आ जाएगी, ऐसा लगेगा मैं भी साकार की जो बाबा के साथ रहा हुआ है, इतना अच्छा अनुभव रहता है। बाबा जब बाहर खड़े हैं दो तीन माताएं बाबा को ऐसा सैल्यूट मारा हुआ फोटो है वहाँ, तो इसे लगता है जैसे बाप बच्चे को विदाई कर रहे हैं। तो ये जो यादें हैं बाबा ने क्यों बताया है, क्योंकि हम लोगों को संगम युग में वो जो दिन गए हैं साकार के दिन जो अभी गए हैं, लेकिन अभी भी उसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी जगदीश भाई बोलते थे रोज कम से कम एक पेज तो पढ़ना चाहिए ब्रह्मा बाबा कैसे हैं, क्योंकि निराकार परमात्मा है, निराकार परमात्मा से हम पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है क्योंकि साकार लोक में है। तो ब्रह्मा बाबा को सामने इसलिए रखना है, ब्रह्मा बाबा हमारे सामने है, अभी भी है सूक्ष्म में भी है, लेकिन ब्रह्मा बाबा को अगर स्थूल में भी देखना चाहते हैं तो आप वो अनुभव करो। और बाबा कहते हैं ये ज्ञान से सूरज को बाबा शिव बाबा को टैली करते हैं, और यहाँ शिव बाबा हैं वहाँ सूरज है, सूरज से क्या क्या मिलता है, यहाँ शिव बाबा से हमको क्या मिलता है, ऐसा कई जो बातें हैं संगम युग में हर एक एक चीज का अनुभव करना। संगम युग में वो जो लौकिक में जो एग्जाम्पल देते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, बाबा यहाँ टैली कराते हैं, आपकी जो बाहर दुनिया में लोग क्या करते हैं जो उसे मंत्र पढ़ते हैं, ये जैन लोग भी जाते हैं और ये क्रिश्चियन लोग भी जाते हैं, बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं, वो लोग बाहर की कर रहे हैं लेकिन आप अंदर की माला जपना चाहिए। लौकिक में भी बहुत सारी जो ऐसा जो मठ मंदिर है जैसे गुरुद्वारा में जाओ बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं एक एक माला लेके बैठ जाएंगे और वो करते रहेंगे, लेकिन उसी के आधार से बाबा कहते हैं यहाँ कौन से माला जपना है आप मुझे याद करो। संगम युग में जो भी हम करते हैं वो बाहर दुनिया में लोग दिखाया है, उसके लिए हमारा जो संगम युग का जो हमारा जीवन है हमारा जो इतना जो वैल्यूबल है, हमारा जैसे संकल्प है हमारे संकल्प से दुनिया चलता है, बाहर जो दुनिया में जो हो रहा है वो हमारे संकल्प से चल रहे हैं। इसलिए हमारा ब्राह्मण का एक एक संकल्प, दादी जानकी हमेशा बोलते हैं इधर शिव बाबा हैं, इधर ब्रह्मा बाबा मेरे भाग्य हैं। तो हमेशा अपना भाग्य को याद करो तो लौकिक में इतना सारी महिमा हो रही है वो किसकी हो रहे और मेरा हो रहा है, और नशे आ जाएगा, खुशी हो जाएगा। लोग बहुत सारी आत्मा आपका इंतजार कर रहे हैं, उसका साक्षात्कार होगा आपका। जब होगा साक्षात्कार, अभी हमारा स्थिति एकदम मजबूत बन जाएंगे। तो संगम युग की जो एक एक जो एग्जाम्पल है वो हमारे लिए है, लेकिन उसके जो याद करने से जो खुशी बढ़ती है वो खुशी कायम रहता है। इसलिए जगदीश भाई हमेशा बोलते थे जीवन में सामने कोई भी है, लेकिन आपके सामने बाबा बैठा है। विश्वरत्न दादा को हमने देखा है, बहुत नजदीक से देखा, विश्वरत्न दादा एक ही पॉइंट बता रहे थे। विश्वरत्न अष्टरत्न दादा के इतना सुंदर अनुभव बताते हैं, बाबा बाजू में बैठा हुआ है, बस बाबा को सामने रखो। इसके संगम युग का जो भी है, आप बाहर भक्ति में जो हो रहे हैं वो आपके लिए हो रहे हैं। इसलिए संगम युग में हमेशा ये याद रखो, मेरा यादगार वहां चल रहे हैं, तो मैं अभी कितना करूंगा, मैं कितना सेवा करूंगा, उस हिसाब से मेरा जो भाग्य बनेगा, और बाहर मेरा इतना ही पूजा होगा। और चार प्रकार के जो बताते हैं, एक तो वाचा सेवा करते हैं, वाचा सेवा की यादगार बनता है। अभी भी भगत लोग कितना मगन हो जाते हैं, एकदम जो गीत गा करके। हमारा साउथ इंडिया में जहाँ एक मंदिर है, इधर से महाराष्ट्र से लोग आते हैं, साउथ इंडिया से महाराष्ट्र आते हैं, एक दिन हमारे गांव में रुकते थे, मैं बचपन में वो देखता हूँ, वो लोग हमारे पास रुकते थे तो सभी को हम लोग बैठ देते थे, वो लोग गीत गाते थे, इतना तल्लीन हो जाते थे। अभी भी 10 लाख लोग आते हैं महाराष्ट्र में, वो पंढरपुर में विठोबा के नाम से पूजा करते हैं। तो यादगार है हमारा। तो संगम युग में हम अगर वाचा शब्द में अपने बाबा की बात सुनाते हैं और धन की सेवा करते हैं, धन की सेवा का क्या एग्जाम्पल है, राजा लोग बड़े बड़े मूर्ति के सामने हीरों के हार डाल करके आनंद का अनुभव करते थे। तो आपका भी ऐसा है, जिस वक्त अगर आप धन की सेवा जितना करेंगे उसका जो उसका मिलेगा। और मनसा सेवा की बात बताते हैं, जिस समय आप मनसा सेवा, यहाँ सबर उठ करके डेली 10-15 मिनट जितना भी आप मनसा सेवा करेंगे, उसी के आधार से भक्ति मार्ग में आपका लोग मन से याद करते हैं। साथ साथ में कर्मणा सेवा का दिखाते, पांडवों को शक्तिशाली दिखाते, तो मतलब आपका कंचन काहे बनता है। संगम युग में जितना हमारा जो यादगार है, हम जितना याद करेंगे उतनी आनंद हमको भी रहेगा और जो आने वाला आत्मा को होगा। ओम शांति।
ओम शांति। ये अव्यक्त मुरली पर आधारित कविता बनाई गई है जो कल ओम शांति भवन में पढ़ी जाएगी। 29 दिसंबर 1983 को रहमदिल दिलाराम बाप, 29 दिसंबर 1983 को रहमदिल लीलाराम बाप बच्चों से मिलने को तत्पर। सुना रहे संगम युग सहज प्राप्ति का युग है। ओम शांति भवन में आबू पर्वत पर। बाप दादा तो है सदा बड़ी दिल वाले। बेहद की दिलवाले दिलाराम। बच्चे भी कम नहीं है। दिलखुश नसीब बड़ी दिलवाले है, देते सबके दिल को आराम। आपके जगने से जग जागे। सोने से जग सोए आप हो जहान के आधार। आपकी चढ़ती कला से पाकर मुक्ति जीवन मुक्ति आत्माएं करती आपका आभार। तीनों लोकों में आपके राज्य में नहीं है दुख अशांति का नामो निशान। सुख शांति की अंचली देकर कर देते पूरे सबके अरमान। आप हो दाता विधाता वरदाता भाग्य विधाता बाप के बच्चे लाडले। रहते सदा रूहानी नशे और खुशी में। बेहद के दिल वाले। हद की प्राप्तियों से हुए दूर सहज प्राप्ति के बने अनुभवी। खाते हैं प्रत्यक्ष फल। एक बीज लगाकर पद्मों की कमाई। नहीं रखते अटेंशन जो खराब कर देते देता फल को माया पंछी, नहीं रखते अटेंशन जो खराब कर देता फल को माया पंछी, अटेंशन रख योग लगाओ पढ़ाई पढ़ो एक का पदम गुना फल पाओ, तुम आत्म पंछी तुम आत्म पंछी। अगर मेहनत करते सेवा करते भी जमा नहीं तो, अगर मेहनत करते सेवा करते भी जमा नहीं तो अनगिनत फल की प्राप्तियों से रह जाते वंचित। इसलिए वातावरण रूपी धरनी में शक्तिशाली संकल्प कर्म रूपी बीज को कर लो संचित, बीज को कर लो संचित। मैंने किया इस हद के संकल्प द्वारा कच्चा फल खा लेते, मैंने किया इस हद के संकल्प द्वारा कच्चा फल खा लेते, मनमत परमत व्यर्थ संकल्पों के मायापंची फल को समाप्त कर देते, फल को समाप्त कर देते। फल अर्थात प्राप्तियों से वंचित आत्माओं के, फल अर्थात प्राप्तियों से वंचित आत्माओं के पता नहीं क्यों यही बोल मुख से निकलते, पता नहीं क्यों यही बोल मुख से निकलते। सहज योगी सहज प्राप्ति की सीजन पर दाता विधाता होते भी मेहनत क्यों करते, दाता विधाता होते भी मेहनत क्यों करते। अपार है सदा दिल, अगर है सदा दिल तक सन्नसीन तो हो नहीं सकती मेहनत, अगर है सदा दिल तक तनसीन तो हो नहीं सकती मेहनत। संकल्प किया और मिली सफलता जो करते फालो बाप की श्रीमत, करते फालो बाप की श्रीमत। मेहनत करने का कारण है आलस्य अलबेलापन, मेहनत करने का कारण है आलस्य अलबेलापन जिससे थक जाते। सिद्धि स्वरूप के इस स्मृति स्वरूप के किले में रहो तो माया के भूत भाग जाते, माया के भूत भाग जाते। किले के अंदर रहते भी कमजोरी के दरवाजे खिड़की खुले रखे तो माया क्यों नहीं लेगी चांस। किले के अंदर रहते भी कमजोरी के दरवाजे खिड़की खुले रखे तो माया क्यों नहीं लेगी चांस। लोकलाज वश क्या कहेंगे क्या समझेंगे, इस मजबूरी से नियम पालन नहीं करते, यही है माया की फांस, यही है माया की फांस। दृढ़ता की निशानी है सफलता, दृढ़ता की निशानी है सफलता, जहां दृढ़ता है वहां सफलता न हो यह हो नहीं सकता, जहां दृढ़ता है वहां सफलता न हो यह हो नहीं सकता। वर्तमान समय है सहज प्राप्ति का युग, वर्तमान समय है सहज प्राप्ति का युग, समय निकल रहा तेजी से लाओ पुरुषार्थ में नवीनता, लाओ पुरुषार्थ में नवीनता। मास्टर सर्वशक्तिवान बन के भी मेहनत तो मास्टर बनके क्या किया, मास्टर सर्वशक्तिवान बनके भी मेहनत तो मास्टर बनके क्या किया। मेहनत से छुड़ाने वाला बाप मिला तो कहो दिल से शुक्रिया, कहो दिल से शुक्रिया। बोझ मेहनत छोड़ बनो हल्के तो सदा रहेंगे सदा बनके फरिश्ते, बोझ मेहनत छोड़ बनो हल्के तो उड़ते रहेंगे सदा बनके फरिश्ते। ऐसे सदा दिलखुश सहज फल की प्राप्ति स्वरूप वरदाता वारिस बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।
कल जो मुरली चलने वाले हैं 29 दिसंबर 1983 संगम युग सर्व सहज प्राप्ति का युग है। इस मुरली के ऊपर मुझे होमवर्क मिला है, होमवर्क मेथड, तो इस मुरली से क्या होमवर्क हम करना है। पहला होमवर्क है, इस मुरली में बाबा ने कहा है सर्व आत्माओं को और विश्व को यथाशक्ति प्राप्ति कराने वाले हम स्व प्राप्ति स्वरूप बनना है। तो सर्व आत्माओं को और विश्व को यथाशक्ति प्राप्ति मतलब क्या हम करते हैं। इसमें मुरली में बाबा ने कहा है कि अगर हम जागते हैं तो दुनिया भी जागते हैं, अगर हम सोते हैं तो दुनिया भी सोते हैं, अगर हमको उड़ती कला है तो दुनिया को भी कल्याण होता है, और दुनिया के उनकी यथाशक्ति के हिसाब से मुक्ति और जीवन मुक्ति भी मिलता है। और जब हम इस धरती पर हम राज्य करते हैं, वो राज्य कैसा है, एक ही राज्य है, एक ही भाषा है, एकदम सुख शांति से। जो हमारा राज्य सुख शांति है उसी समय सब आत्माओं मुक्ति स्थिति में शांति स्थिति में घर पे रहते हैं, तो हमारे स्थिति के ऊपर आधार के ऊपर उस आत्मा का निशानी है। और जब तीनों लोकों में जब हम राज्य है, उसी समय तीनों लोकों में भी जरा सा भी दुख अशांति का निशानी भी नहीं है, तो हम है आधार है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप स्व प्राप्ति स्वरूप बनना है। जो हमको जो भी प्राप्ति मिली है, आप सब जानते हैं क्या क्या प्राप्ति मिली है, तो इसको कैसे हम यूज करना है, तो इसका विधि का स्विच ऑन करके हम यूज करना है। जैसे कि जब हम मोबाइल खरीदते हैं उसमें प्री इंस्टॉल्ड एप्स होता है, तो उसको हम मुश्किल से नया नया इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है। जो इंस्टॉल हुआ है उस ऐप को हम अच्छे से यूज करेंगे तो मोबाइल कभी हैंग नहीं होता है। वैसे ही हमारा जो प्राप्ति है ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है, हमारा मैन्युफैक्चर ही उसी से हुआ है, तो क्यों इसके लिए हम मेहनत करना है। जैसा कंप्यूटर में ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर वो ओएस अच्छा है तो कितना अच्छा लैपटॉप या तो कंप्यूटर जो भी हम करने तो हम कर सकते हैं। वैसे ही हमारा जो प्राप्ति है वो सहज प्राप्ति है। जब कब खराब होता है, नया नया एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं जो हमको अननेसेसरी है, उसको हम इंस्टॉल करते हैं, जस्ट हमको ये अच्छा लगता है इसका हम इंस्टॉल करके हम देखते हैं ये ऐप कैसे काम करते हैं। वैसे ही हमको पहले ही बहुत अच्छा प्राप्तियां इंस्टॉल हुई है, लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों को वेस्ट को देख के ये ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करके हम देखते हैं, नया हम इंस्टॉल करते हैं, इसलिए खराब होता है। तो ऑलरेडी है उसको हम यूज करना है। तो और भी क्योंकि बाबा ने कहा है कि हम किसके बच्चे हैं, सर्व प्राप्तियों का दाता और सर्व शक्तियों का विदाता और सेकंड में अधिकार देने वाले भाग्य विदाता वरदाता है और श्रेष्ठ भाग्य विदाता के बच्चे हैं हम। तो हमको ये प्राप्ति को धारण करने में इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये पहला होमवर्क है। तो सर्व आत्माओं को और विश्व को यथाशक्ति प्राप्त कराने वाले हम स्व प्राप्ति स्वरूप बनना कैसे बनना है वो आप करना है, ये पहला होमवर्क है। दूसरा है संकल्प और कर्म। संकल्प और कर्म रूपी बीज और वातावरण रूपी धरनी। बाबा ने पहली बार वातावरण को धरनी बना दिया है, यह एग्जाम्पल, बाबा का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। तो संकल्प और कर्म रूपी बीज और वातावरण रूपी धरनी, ये बीज और धरनी को शक्तिशाली बनाने कैसे हम बना सकते हैं, संकल्प और कर्म का शक्तिशाली। इसमें बाबा ने कहा जो भी इस दोनों से हम कर्म करते उससे जो फल मिलता है वो कच्चा फल हो जाता है, या तो माया रूपी पंछी खा जाता है। तो ये कच्चा फल क्या है, बाबा ने मुरली में कहा है मैंने किया, और क्या क्या कच्चा फल हम खाते हैं। जब हम बोलते हैं ना सेवा किया, तो बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, बाबा ने मुझे ट्रस्टी बनाया है, ये है ना ट्रस्टी है निमित्त है, ये तो निस्वार्थ है, लेकिन उसके आगे ये मुझे हम डालते हैं ना, ये भी एक सूक्ष्म कच्चा फल है। और दूसरों को भी बाबा ने आपको निमित्त बनाया है, आपको ट्रस्टी बनाया है, ये भी नहीं बाबा ने किया है, बस सब कुछ बाबा के साथ करना है, ये भी सूक्ष्म रूप से हम कच्चा फल खाते हैं। तो ये हम ध्यान रखना है। और वातावरण जैसे हमारा स्मृति क्या है, उससे ही वृत्ति बनता है, उससे ही दृष्टि और कृति भी बनता है। तो इससे ही अगर बीज ठीक है तो उसका वातावरण रूपी धरनी भी शक्तिशाली होगी। तो ये दूसरा होमवर्क है। तीसरा क्या है, बाबा ने बोला खुशी के झूलने में झूलते आप सर्व को विघ्न को विघ्नहर्ता बनना है और सर्व को मुश्किल को सहज बनाना है। तो इसके लिए बाबा ने कहा है दृढ़ता और डबल लाइट। दूसरों को विघ्नों को हारना है तो हम खुद विघ्न विनाशक बनना है, करना है, दूर करना है। तो बाबा ने कहा है स्वमान दिया है, आप बाबा के बच्चे हैं तो आप स्वदर्शन चक्रधारी हो, स्वदर्शन चक्रधारी है विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। और विश्व कल्याणकारी कैसे बनते हैं, क्योंकि खुद विघ्न विनाशक है, तो दूसरों को विघ्न को दूर करना है तो पहला हम खुद जानना चाहिए विघ्न क्या क्या, किस किस रूप में हमको आता है, तो क्या क्या हमको विघ्न आता है, किस रूप में आता है, विघ्न मतलब क्या है। हाँ जी, अपने अपने पुराने संस्कार और कमजोरी, थॉट, वीक थॉट, कोई आदत है, बुरा आदत है, और अचानक हमको बीमार पड़ जाते हैं, हेल्थ इश्यूज है, वो भी हमको विघ्न पड़ जाता है। और क्या क्या है, प्रकृति, नेचुरल कैलामिटीज है, दूसरों को वीकनेस को देखना है, और ग्रहण को, ग्रहण बोलते हैं ना, दूसरों का वीकनेस को देखेंगे तो वो वीकनेस हमारे अंदर आ जाएगा, यही ग्रहण है, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा, ये सब हमको विघ्न हो जाता है। तो इस विघ्न से कैसे हम दूर हो सकते हैं, विघ्न विनाशक कैसे बनना है, स्वमान, स्वमान को अभ्यास करना है। हम ये नहीं सोचना है विघ्न है, क्योंकि ऐसा है ना, हमारा पास्ट में कुछ घटना हुआ होगा, उसके बारे में ज्यादा सोच सोच के छोटा प्रॉब्लम को बड़ा हम बना रहते हैं, ये भी हमको बड़ा विघ्न हो जाता है। तो पहला क्या है, प्योर थॉट्स, वीक थॉट्स नहीं, पॉजिटिव थॉट्स रचनी है, जो हुआ तो उसको पॉजिटिव में चेंज करना है, और जो भी हो रहा है, समस्या है, जो भी है, उसको बाबा को सरेंडर करना है, सरेंडर करना है, फिर जो भी बातें हैं उसको फुल स्टॉप लगाना है। और क्या है, और क्या क्या हम कर सकते हैं, हाँ जी, साइड सीन्स, हाँ, टेस्ट पेपर ऐसा समझना है, और साक्षी दृष्टा, साक्षी हो जाना है, अगर आ गया तो बस ड्रामा ऐसा मूवी हम देखते हैं ऐसा हम देखता है, साक्षी दृष्टा होना है, फुल स्टॉप, और सरेंडर करना है। ऐसा हम करेंगे तो हम खुद विघ्न विनाशक हम बन सकते, तभी दूसरों को विघ्नों को भी हम दूर कर सकते। अगर हम, हमारे पास कोई समस्या के साथ, प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन के लिए आते हैं, तो अगर हमको खुद एक्सपीरियंस हो तभी तो दूसरों को हम सजेशन हम दे सकते हैं। तो ये अभ्यास करना है। अगर और क्या है, दूसरों को मुश्किल को सहज बनाना है, तो इसके लिए हम पहला डबल लाइट होना है, हल्का रहना है, तभी तो दूसरों को भी हम हल्का कर सकते हैं, ये तीसरा है। और चौथा होमवर्क है, बाबा ने कहा है सदा सफलता की चमकती हुई सितारे हैं, तो इसमें बाबा ने कहा है हम अभी भी हमारा जड़ चित्र के रूप से हम हमारा भक्त लोग को वरदान देते हैं, तो हम तो अभी चैतन्य रूप है, चैतन्य सफलता सितारे हैं, तो क्यों हम नहीं वरदान अभी हम दे सकते, तो कैसे हम दुआएं दे, दूसरों को वरदान हम कैसे दे सकते, इसके ऊपर होमवर्क करना है। पहला है दूसरों के प्रति शुभ संकल्प, शुभ भावना, ये रखना है, ये भी एक प्रकार का वरदान देना है। अगर किसी ने कोई वीकनेस को हमने नोटिस किया तो तुरंत उसको पॉजिटिव में करके उसको उसके ऊपर शुभ संकल्प रचना है, ये भी एक दुआ होता है। और हमारा चलन चेहरे, किसी किसी को ये देखने से भी किसी किसी को वरदान हो जाता है, देखने से अगर हम कुछ अच्छा आदत है उसको देख के कोई फॉलो करते उससे उनका उन्नति होता है, ये भी एक उनको वरदान हो जाता है। हमारा बोल, वचन और कर्म, ये तीनों से हम दूसरों को वरदान देना है, ये चौथा होमवर्क है। पांचवा है, बाबा ने कहा है संपन्न अर्थात अचल, तो कैसे संपन्न होना है, कैसे अचल रहना है, संपन्न मतलब बाबा ने कहा सहज प्राप्ति का अधिकार हो आप, तो भरपूर आत्माएं हैं आप, तो इसके लिए एक युक्ति बाबा ने, सदा बाबा को साथ रखना है और बाबा का सहयोग लेना है। तो बाबा ने कई मुरली में कहा है कि हाँ, जो भी हम कर्म करने से पहले और जो भी इवन संकल्प रचने से पहले भी बाबा से हम राय लेना है, बाबा ऐसा मैं कर सकती हूँ क्या, ऐसा मैं सोच सकती हूँ क्या, हर बात में बाबा से पूछना है, यही हर अगर हम क्लास करने आते बाबा अभी हम क्लास करने जा रहे हैं, जो भी बोलना है आप साथ में बैठना है, आप करना है, जो भी मिस्टेक आप मुझे करेक्ट करना है, क्योंकि हम सब परिवार है, हम बाबा कैसे हमको साथ देंगे, कैसे हमको करेक्ट करेंगे, साथ है ना आप लोग, अगर अभी मैं मिस्टेक करूं, मुझे मेरा हिंदी तो ठीक नहीं है, तो बीच बीच में आप लोग करेक्ट करते हैं, वैसे ही बाबा मुझे हेल्प करते, यही बाबा खरक करते हैं ना, आपके थ्रू यही बाबा का साथ है सहयोगी, इसको हम पहचानना है, रेगनाइज करना है। एक पांचवा होमवर्क है, सिर्फ पांच होमवर्क है। चलो ओम शांति।
ओम शांति। कल की मुरली से हमको सोमान मैटर मिला है, उसमें हमने कुछ सोमान के बारे में लिखा है। तो सोमान क्या है कि सोमान देह अभिमान को मिटाता है, इसके मैं एक्यूरेट तो मैं ऐसे नहीं सुना लेकिन थोड़ा सा मैं पढ़ के, सोमान देह अभिमान को मिटाता है। सोमान नहीं वो मैं सुनाऊंगा उसमें। सोमान अभिमान को जगाता है, सोमान स्वयं के अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाता है, सोमान महान विचारों को निर्माण करता है, सोमान हमें एकाग्रचित करता है, सोमान हमें सुरक्षा प्रदान करता है, सोमान हमें सम्मान दिलाता है, सोमान शक्तिशाली बनाता है, और सोमान हमें कलयुगी प्रभाव से मुक्त कर सकता है, सोमान अहंकार को नष्ट करता है, सोमान इच्छाओं को समाप्त करता है, सोमान पुरानी यादों को भुलाता है, सोमान ही शुद्ध नशा है, सोमान श्रेष्ठ और शक्तिशाली चिंतन करना सिखाता है। तो सबसे शक्तिशाली सोमान है, मैं महाष्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो आत्माएं इस सोमान के नशे में रहते हैं वो माया पुरुप और विघ्न पुरुप स्वतः बन जाते हैं। वो यही अभ्यास करते कि सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, बाबा की शक्तियाँ मेरे साथ है, और वो किसी भी परिस्थिति में घबराएंगे नहीं, और वो यही अभ्यास करेंगे कि बाबा की शक्तियाँ के नीचे हैं और वह बाबा की सर्वशक्तियाँ मेरे साथ है, ऐसा वो अभ्यास करेंगे। और दूसरा सोमान था कि मैं विघ्न विनाशक हूँ, तो विघ्न विनाशक में इस स्मृति में हमारा जीवन मुक्त विघ्नों से मुक्त हो जाता है। ऐसे विघ्न विनाशक गणेश को दिखाया है, क्योंकि मंदिरों में जिनकी पूजा वो करते हैं उनके नाम से विघ्न नष्ट होते हैं। ऐसे ही मैं सदा सफलता का सितारा हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। इस जहान के सितारे हो तुम, भगवान के नैनों के नूर हो, तो आप भी चमकते हुए सफलता के सितारे हो। सफलता को सभी पसंद करते, कोई प्रार्थना भी करते हैं तो कहते हैं कि ये कार्य सफल हो, तो आप स्वयं सफलता के सितारे हो। ऐसे ही फिर दूसरा सोमान था कि मैं महावीर हूँ, तो महावीर समझने से क्या होगा, माया पर विजय पाए। ऐसे ही चौथा सोमान, पांचवा सोमान है मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, और छठा सोमान है मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, तो और सातवां सोमान है मैं संगम युग सर्व प्राप्तियों के अधिकारी सहज योगी आत्मा हूँ। तो ऐसे सोमान महावीर आत्मा समझेंगे तो कोई भी परिस्थिति में घबराएंगे नहीं और सदा अचल अडोल रहेंगे।
ओम शांति। कल जो मुरली चलने वाली है 29 दिसंबर 1983, उसके वो मुरली जो है कॉन्ट्रास्ट मेथड के ऊपर, 7 कॉन्ट्रास्ट मेथड्स हैं, जिसमें फर्स्ट में बाबा ने स्टार्ट किया है, बाबा ने अपनी जो महिमा बताई है कि बाबा जैसे दिलाराम है, बेहद का बाप है, ऐसे ही बेहद के बाप के हम ऐसे बच्चे हैं, बेहद के संकल्प को धारण करने वाले। यहाँ पर हम बच्चे कैसे हैं, बेहद के दिल वाले हैं, बाबा ने कहा फ्राक दिल वाले हैं, लेकिन दुनिया में हद के संकल्प, स्वार्थवश, यहाँ पे हम क्या करते हैं, विश्व कल्याण के बारे में सोचते हैं। बाबा ने जैसे कहा, मुरली का टाइटल था संगम युग सहज प्राप्ति का युग, संगम युग अर्थात ही चढ़ती कला का युग। लेकिन संसार में क्या होता है, सत्युग से लेकर कलयुग तक चाहे हम कितना भी श्रेष्ठ कर्म करें, लेकिन कलाएं तो फिर भी क्या होती हैं, गिरती हुई कलाएं होती हैं। फिर बाबा ने आगे बताया मुरली में ही कि सहज प्राप्ति कैसे होती है, हम यहाँ पर बाबा के बच्चे बने और अधिकारी बने और सहज प्राप्ति होने लगी, क्योंकि हम दाता के बच्चे बन जाते हैं, देने वाले बनते हैं, लेकिन दुनिया में क्या होते हैं, लेने वाले होते हैं। और अगर कल्याण भी करेंगे तो करके किसका करेंगे, एक दो का, अपने परिवार का, शायद आजकल तो वो भी नहीं होता है। सब स्वार्थ वाले हो गए हैं। फिर बाबा ने बताया कि संगम युग वर्तमान समय जो है ये सीजन है सहज फल का। सीजन का फल अर्थात सहज फल प्राप्ति का, कि इस समय हमने एक किया और हमें पदम गुणा मिलता है। लेकिन दुनिया में क्या होता है, दुनिया में द्वापर और कलयुग, उसमें क्या होता है, करते रहते हैं मेहनत करने के बाद भी आजकल नहीं मिलता, दूसरा छीन के ले जाते हैं वो अलग, लेकिन मेहनत करने के बाद भी उतनी प्राप्ति नहीं होती। और बाबा यहाँ कहते हैं कि आप एक करते हो और आपको कितना मिलता है, पदम गुणा मिलता है। फिर बाबा ने कहा लेकिन एक करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए, जो संकल्प और कर्म है वो जो बीज है वो शक्तिशाली होना चाहिए, जिसके लिए हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। बाबा ने कहा यहाँ पे हम दृढ़ता रखते हैं तो सफलता सहज हो जाती है, इसके लिए हमें समर्थ संकल्प, बाबा ने बहुत सारे संकल्पों की बात करी, समर्थ संकल्प कैसे रखना है। लेकिन वहां पर दुनिया में क्या होता है, सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, दृढ़ता ही नहीं है, तो क्या बन जाते हैं दुनिया वाले, वंचित आत्मा। तो फिर सोचते हैं कैसे करें, क्या होगा, और यहां पर हम क्या करते हैं, सोचने की जरूरत ही नहीं, सारा कुछ हुआ ही पड़ा है। फिर बाबा ने हमें करने की भी जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को अधिकारी बना दिया कि सहज प्राप्ति सारे आप अधिकारी हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, कितनी सारी बातें कही। अधिकारी के लिए बाबा ने कहा कि आप सभी स्वदर्शन चक्रधारी हो, क्योंकि जब हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो विघ्न विनाशक बन जाते हैं। लेकिन दुनिया वाले कैसे, विघ्न स्वरूप कहते हैं, विघ्न है, प्रॉब्लम है, वहां पे क्या कहते हैं, प्रॉब्लम तो पार्ट ऑफ लाइफ है, और हम यहाँ क्या कहते हैं, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, वहां पे क्या हो जाता है, विघ्न विघ्न करते रहते हैं, और यहाँ पर हम विघ्नहर्ता बन जाते हैं। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छी बात मुरली में ही आगे कही कि मेरापन है तो क्या है, विघ्नों का जाल है, और मेरापन नहीं है तो विघ्नों का जाल नहीं। दुनिया में क्या होता है, मेरा मेरा करते रहते हैं और बोलते हैं कि कैसे करें, क्या करें, मेरे ऊपर है, मेरी जिम्मेवारी, और यहाँ पर क्या हो जाता है, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा का है। एंड देन लास्ट में बाबा ने कहा, जो डिफरेंस बताया, सफलता के सितारे स्थूल सितारे। दुनिया में क्या होता है, हम सितारों को देखते हैं चमकते हुए तो अच्छा लगता है, खुशी होती है, लेकिन बाबा ने कहा वो तो जड़ सितारे हैं, सिर्फ उनको देख के खुशी हो सकती है, लेकिन हम जो सितारे हैं, सफलता के सितारे, दुनिया में आज सबको क्या चाहिए, सक्सेस चाहिए, उसके पीछे सभी भागते हैं। बाबा कहते हैं कि आपकी जो जड़ चित्र हैं वो भी सफलता देते हैं, आप ऐसे सफलता के सितारे हो। दुनिया में लोग सफलता मांगते हैं, बाबा कहते हैं आप मास्टर सर्वशक्तिमान, अर्थात हम सफलता के पीछे नहीं भागते, हम सफलता स्वरूप हैं। तो बाबा ने सबसे बड़ा डिफरेंस ये बताया, कॉन्ट्रास्ट का, ताकि हम उस डिफरेंस को जान करके, उस नशे, उस निश्चय, उस खुशी में रह करके फिर पुरुषार्थ करें, उतनी जिम्मेवारी को समझ करके फिर चले। शांति।